पद विश्लेषण आइटम एनालिसिस प्रश्नों की विशेषताओं को आंकिक दृष्टि से विश्लेषित करने की प्रक्रिया को पद विश्लेषण कहते हैं। पद विश्लेषण के आधार पर प्रश्नों का चयन अथवा प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। परीक्षण निर्माता का उद्देश्य एक अच्छे परीक्षण का निर्माण करना होता है, जो अपने कार्य को कम समय, कम धन तथा कम शक्ति के व्यय से सफलतापूर्वक कर सकें। अतः उसका उद्देश्य परीक्षण में केवल ऐसे प्रश्नों को रखना होता है जो आवश्यक तकनीकी विशेषताएं रखते हों, जिससे एक संक्षिप्त परंतु प्रभावशाली परीक्षण बन सके। पद विश्लेषण में प्रश्नों की को दो तकनीकी विशेषताओं तथा कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता की गणना की जाती है। विभेदन क्षमता को पद वैधता आइटम वैलिडिटी भी कहते हैं। पद वैधता बताती है कि प्रश्न कुल प्राप्तांक के अनुरूप किस सीमा तक मापन कर रहा है अथवा अच्छे व कमजोर छात्रों में विभेद कर रहा है। किसी प्रश्न के कठिनाई स्तर से तात्पर्य छात्रों की दृष्टि में प्रश्न की कठिनता से है, जबकि प्रश्न की विभेदन क्षमता बताती है कि अच्छे प्रश्न अच्छे व कमजोर छात्रों में अंतर करने में किस सीमा तक सफल होता है। पद विश्लेषण करने के लिए परीक्षण को छात्रों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर प्रशासित किया जाता है। विभिन्न प्रश्नों पर छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों को प्रत्येक प्रश्न के संदर्भ में सांख्यिकीय विधियों से विश्लेषित किया जाता है तथा कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता की गणना की जाती है। मापन एवं मूल्यांकन की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में पद विश्लेषण की 1000 से भी अधिक विधियों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता ज्ञात करने की एक अत्यधिक सरल परंतु उपयोगी विधि प्रस्तुत की जा रही है। इस विधि में निम्नांकित 7 पद हैं। प्रथम, सबसे पहले परीक्षण को छात्रों के एक बड़े प्रतिनिधि प्रतिदर्श पर प्रशासित करें। द्वितीय, प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए परीक्षण पर कुछ प्राप्तांकों की गणना करके प्राप्तांक को उस परीक्षार्थी की परीक्षण पुस्तिका उत्तर पत्रक पर अंकित करें। तृतीय, परीक्षण पुस्तिकाओं या उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्तांकों के आधार पर अधिक से कम के नाम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। चतुर्थ, परीक्षण पुस्तिकाओं या उत्तर पत्रकों के दो समूह, उच्च समूह तथा निम्न समूह बनाइए। ऊपर के 27% छात्रों को उच्च समूह में रखिए तथा नीचे के 27% छात्रों को निम्न समूह में रखिए। प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान होगी। इसे स्मॉल n से व्यक्त किया जा सकता है। पंचम, प्रत्येक प्रश्न के लिए उच्च समूह में सही उत्तरों की संख्या RH तथा निम्न समूह में सही उत्तरों की संख्या RL ज्ञात करें। षष्ठ, प्रत्येक प्रश्न के लिए RH एवं RL को जोड़कर प्राप्त मान को 2N से भाग कर दें। अब इसे 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल दीजिए। यही उस प्रश्न के लिए कठिनाई स्तर होगा। इसे DV संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं। अतः कैपिटल DV बराबर RH प्लस RL बटे 2N गुणे 100। सप्तम, प्रत्येक प्रश्न के लिए RL व RH से घटा दो तथा प्राप्त अंतर को स्मॉल n से भाग कर दो। यही उस प्रश्न के लिए विभेदन क्षमता गुणांक होगा। इसे कैपिटल DP संकेताक्षर से लिखते हैं। अतः कैपिटल DP बराबर RH माइनस RL बटे N। स्पष्ट है कि कठिनाई स्तर का मान प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जबकि विभेदन क्षमता का मान दशमलव अंक के रूप में लिखा जाता है। किसी प्रश्न के लिए कठिनाई स्तर का प्रतिशत जितना अधिक होता है, प्रश्न उतना ही सरल होता है। प्रश्नों के कठिनाई स्तर तथा उनकी अधिक संभव विभेदन क्षमता में सीधा संबंध होता है। इस संबंध को नीचे दी गई सारणी तथा चित्र में स्पष्ट किया गया है। सारणी, कठिनाई स्तर व अधिकतम संभव विभेदन क्षमता में संबंध। कठिनाई स्तर डीपी, अधिकतम संभव विभेदन क्षमता डीवी 0%, विभेदन क्षमता डीवी बराबर 0.00, डीपी 10%, डीवी 0.20%। इन दोनों से स्पष्ट है कि 50% कठिनाई स्तर वाला प्रश्न ही सर्वाधिक विभेदक हो सकता है। इससे सरल या कठिन प्रश्नों की विभेदन क्षमता कम होती है। कठिनाई स्तर तथा अधिकतम संभव विभेदन क्षमता के संबंध को सूत्र रूप में निम्न ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। यदि कठिनाई स्तर 50% या इससे कम हो है, तब अधिकतम संभव विभेदन क्षमता बराबर 2 गुणे कठिनाई स्तर बटे 100। यदि कठिनाई स्तर 50% से अधिक है, तब अधिकतम संभव विभेदन क्षमता बराबर 2 गुणे 100 माइनस कठिनाई स्तर बटे 100। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि औसत कठिनाई स्तर अर्थात 50% कठिनाई स्तर वाले प्रश्न अधिक अच्छे क्यों माने जाते हैं। इसलिए परीक्षण में अधिकांश प्रश्न औसत कठिनाई वाले अर्थात 40-60% कठिनाई स्तर वाले रखे जाते हैं। परंतु विभिन्न प्रकार के छात्रों की योग्यता का मापन करने के लिए कुछ प्रश्न कम कठिनाई स्तर वाले तथा कुछ प्रश्न अधिक कठिनाई स्तर वाले भी रखे जाते हैं। अत्यधिक सरल या अत्यधिक कठिन प्रश्नों को परीक्षण में नहीं रखना चाहिए। 0.50 या अधिक की विभेदन क्षमता अच्छी मानी जाती है, परंतु 0.30 या इससे अधिक विभेदन क्षमता वाले प्रश्नों को भी परीक्षण में सम्मिलित किया जा सकता है। 0.30 से कम विभेदन क्षमता वाले प्रश्नों को या तो छोड़ दिया जाता है अथवा उनमें सुधार की आवश्यकता होती है। पद विश्लेषण की विधि किसी उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगी। उदाहरणार्थ, माना 20 प्रश्नों वाला एक परीक्षण पद विश्लेषण के लिए 185 छात्रों के समूह पर प्रशासित किया गया। स्पष्ट है कि उच्च व निम्न समूहों में प्रत्येक में 50 छात्र होंगे, अर्थात स्मॉल n बराबर 50 होगा। उच्च व निम्न समूहों में सही उत्तर की संख्या तथा उनसे गणना करके प्राप्त कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता गुणांक पृष्ठ 173 पर दी गई सारणी में प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ लेखक उच्च तथा निम्न समूहों में प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या को अनुपात में व्यक्त करते हैं। इसके लिए सही उत्तरों की संख्या कैपिटल R को समूह में छात्रों की संख्या कैपिटल N से भाग देना होगा। दूसरे शब्दों में RH व RL को स्मॉल n से भाग देने पर क्रमशः PH व PL प्राप्त हो जाएंगे, जो उच्च व निम्न समूहों में सही उत्तरों के अनुपात के द्योतक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए PH व PL की गणना करने के बाद निम्न सूत्रों से कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता ज्ञात की जाती है। कठिनाई स्तर DV बराबर PH प्लस PL बटे 2, विभेदन क्षमता बराबर DP बराबर PH माइनस PL। उपरोक्त सूत्रों से स्पष्ट है कि कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता दोनों का मान ही अनुपात में आएगा। दोनों ही विधियों से परिणाम एक समान होते हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रथम विधि में कठिनाई स्तर प्रतिशत में प्राप्त करते हैं, जबकि दूसरी विधि में अनुपात के रूप में। अनुपात के रूप में प्राप्त कठिनाई स्तर की स्थिति में 0.50 का कठिनाई स्तर अच्छा माना जाता है, परंतु परीक्षण में इससे कम व अधिक कठिनाई स्तर के प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाता है। अनुपात के रूप में कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता ज्ञात करने की विधि उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगी। उदाहरण के लिए माना 500 छात्रों को एक परीक्षण दिया गया। पद विश्लेषण के 27% के आधार पर उच्च व निम्न समूहों को बनाने पर प्रत्येक में 135 छात्र होंगे। तब पद विश्लेषण सारणी प्रारूप अग्रांकित ढंग से होगा। प्रश्न सुधार आइटम रिवीजन। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि पद विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य प्रश्नों का चयन करना है, पद विश्लेषण का एक अन्य उद्देश्य प्रश्नों की संभावना को खोजना है। पद विश्लेषण से संबंधित आंकड़ों की सहायता से प्रश्नों में सुधार किया जा सकता है। पाठकों की सरलता के लिए प्रश्न सुधार को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हाई स्कूल छात्रों के लिए विज्ञान का एक परीक्षण बनाया गया। परीक्षण में विकल्पात्मक प्रश्न थे। पद विश्लेषण के लिए परीक्षण को 385 छात्रों पर प्रशासित किया गया। छात्रों को उच्च व निम्न समूहों में बांटकर स्तर व विभेदन क्षमता ज्ञात की गई। प्रत्येक समूह में 100 छात्र थे। एक प्रश्न के लिए कठिनाई स्तर 63% व विभेदन क्षमता 12 पाई गई। इस प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया। पद विश्लेषण के आंकड़ों के आधार पर इस प्रश्न को सुधारा जा सकता था तथा पुनः पद विश्लेषण करके संशोधित प्रश्न की कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता ज्ञात की जा सकती थी। संशोधन के पूर्व तथा संशोधन के उपरांत पद विश्लेषण के काल्पनिक परिणाम पृष्ठ 175 पर प्रस्तुत हैं। यह प्रश्न जलवायु तथा मौसम के अंतर से संबंधित था। संशोधन के पूर्व प्रश्न के पद विश्लेषण से संबंधित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्न कुछ कठिन प्रश्न हैं। 200 छात्रों में से केवल 74 छात्र इसका उत्तर सही दे पाते हैं। यह प्रश्न श्रेष्ठ व कमजोर छात्रों के अंतर भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 43 श्रेष्ठ छात्र तथा 31 कमजोर छात्र इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं। विभिन्न विकल्पों के लिए छात्रों के उत्तरों की संख्या देखने से स्पष्ट होता है कि विकल्प वी बी तथा डी गलत होने के बावजूद भी श्रेष्ठ छात्रों के लिए काफ़ी आकर्षक था, क्योंकि प्रश्न का प्रथम भाग स्पष्ट है तथा सही उत्तर भी तर्कसंगत है, इसलिए विकल्प बी व डी में सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। विकल्प बी व डी को श्रेष्ठ छात्रों के लिए कम आकर्षक बनाया जाना चाहिए। विकल्प बी को अधिक सरल तथा विशिष्ट बनाकर श्रेष्ठ छात्रों के लिए कम आकर्षक बनाया जा सकता है। विकल्प डी के स्थान पर किसी अन्य स्पष्ट परंतु असत्य विकल्प को प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधित प्रश्न तथा उसके पद विश्लेषण से प्राप्त परिणाम आगे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रश्न, जलवायु तथा मौसम में क्या अंतर है? विकल्प ए, कोई अंतर नहीं। विकल्प बी, जलवायु मुख्य रूप में वर्षा से संबंधित है जबकि मौसम तापमान से। सी, जलवायु मौसम की अपेक्षा अधिक समय तक स्थिर रहती है। डी, मौसम जलवायु से निर्धारित होता है जबकि जलवायु हवाओं से। उत्तरों की संख्या, उच्च समूहों ने क्रमशः जवाब दिए 2, पहले विकल्प के लिए 2, बी के लिए 3, विकल्प सी के लिए 90, विकल्प डी के लिए 5। निम्न समूहों के उत्तरों की संख्या, पहले विकल्प के लिए 23, द्वितीय विकल्प के लिए 25, तृतीय विकल्प के लिए 32 तथा अंतिम विकल्प के लिए 20 थी। संशोधित प्रश्न के पद विश्लेषण आंकड़ों से स्पष्ट है कि संशोधन प्रभावशाली रहा है। अब प्रश्न का कठिनाई स्तर 39% हो गया है तथा विभेदन क्षमता 0.58 हो गई है। अब प्रश्न का स्पष्टतः संशोधन ने प्रश्न को कुछ सरल परंतु अधिक विभेदक बना दिया है। दूसरा प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के उद्देश्य से संबंधित था, जिसका कठिनाई स्तर 27% तथा विभेदन क्षमता 0.10 पाई गई। प्रश्न तथा पद विश्लेषण के समांक निम्नवत हैं। प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। विकल्प ए, भारत पर शासन करना। विकल्प बी, भारत के साथ व्यापार करना। विकल्प सी, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, विकल्प डी भारत में धनार्जन करना। उत्तरों की संख्या, उच्च समूह ने क्रमशः उत्तर दिए 30, 32, 12, 26, निम्न समूह ने 24, ए विकल्प में उत्तरों की संख्या दी 24, बी विकल्प के लिए 22, सी विकल्प के लिए 27, डी के लिए भी 27। पद विश्लेषण के समंकों से स्पष्ट है कि प्रश्न में कुछ भ्रम है। विकल्प ए, बी व डी उच्च समूह में लगभग समान रूप में पसंद किया गया। विकल्प बी सही होते हुए भी विकल्प डी के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अतः विकल्प बी व डी मिलाकर एक विकल्प बनाने तथा एक नया विकल्प खोजने पर प्रश्न उपयुक्त हो सकेगा। संशोधित प्रश्न तथा उसके पद विश्लेषण के परिणाम निम्नवत थे। प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प ए, भारत पर शासन करना। विकल्प बी, भारत के साथ व्यापार करके धनार्जन करना। विकल्प सी, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। विकल्प डी, भारत में उद्योग धंधे लगाना। उत्तरों की संख्या, उच्च समूह में 12, 64, 15, 9, निम्न समूह में 40, 24, 17, 19। संशोधित प्रश्न के पद विश्लेषण से स्पष्ट है कि अब कठिनाई स्तर 44% हो गया है तथा विभेदन क्षमता 0.40 हो गई है। स्पष्ट है कि संशोधन से प्रश्न अधिक कठिन तथा अधिक विभेदक हो गया है। तीसरा प्रश्न गैस के तापमान तथा दबाव के परस्पर संबंध से संबंधित था, जिसकी कठिनाई स्तर 41% तथा विभेदक क्षमता 0.22 प्राप्त हुई। पद विश्लेषण से संबंधित सूचनाएं निम्नवत थीं। प्रश्न, तापमान के बढ़ाए जाने पर गैस का दबाव विकल्प ए अपरिवर्तित रहता है, विकल्प बी बढ़ जाता है, विकल्प सी घट जाता है, विकल्प डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। उत्तरों की संख्या, उच्च समूह में पहले विकल्प में उत्तरों की संख्या 30, द्वितीय में 52, तृतीय में 7 और चतुर्थ में 11, जबकि निम्न समूह में उत्तरों की संख्या प्रथम के लिए 26, द्वितीय के लिए 30, तृतीय के लिए 23 और चतुर्थ के लिए 21 थी। पद विश्लेषण के समंकों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विकल्प ए तथा बी अधिक आकर्षक हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखने से लगता है कि प्रश्न को और अधिक विशिष्ट बनाकर विकल्प ए के प्रति उच्च समूह का आकर्षण कम किया जा सकता है। संशोधित प्रश्न तथा उसके पद विश्लेषण के समंक निम्नवत हैं। प्रश्न, आयतन को स्थिर रखते हुए तापमान बढ़ाने पर गैस का दबाव विकल्प ए अपरिवर्तित रहता है, विकल्प बी बढ़ जाता है, विकल्प सी घट जाता है, विकल्प डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। उत्तरों की संख्या, उच्च समूह में ए के लिए 11, बी में 81, सी में 3, सी में 5 और डी में 3। निम्न समूह में उत्तरों की संख्या ए में 30, बी में 29, सी में 22 तथा डी में 19 थी। संशोधित प्रश्न का कठिनाई स्तर 55% है, जबकि विभेदक क्षमता 0.52 है। स्पष्ट है कि प्रश्न के कठिनाई स्तर व विभेदक क्षमता बढ़ जाने से यह एक उत्तम प्रश्न हो गया है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि पद विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के निर्देश तथा प्रश्नों के विकल्प की कमियों के संबंध में कुछ सूचना मिल सकती हैं। इस सूचना के आधार पर प्रश्नों में संशोधन करके उन्हें पुनः जांच में सम्मिलित किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रश्न चयन तथा प्रश्न सुधार पद विश्लेषण के अत्यंत महत्वपूर्ण व सार्थक उपयोग हैं। पद विश्लेषण की एक अन्य विधि का वर्णन बुद्धि परीक्षण के निर्माण में किया गया। संप्राप्ति परीक्षण के लिए भी यह विधि प्रयुक्त की जा सकती है। परीक्षण का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग द टेस्ट, परीक्षण निर्माण का चतुर्थ व अंतिम सोपान परीक्षण का मूल्यांकन करना है। पद विश्लेषण के आधार पर चयनित प्रश्नों को परीक्षण के रूप में व्यवस्थित कर लिया जाता है। इस प्रकार से परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार हो जाता है। इस परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं तथा विश्वसनीयता, वैधता तथा मानकों को सुनिश्चित किया जाता है। पूर्ववर्ती अध्याय में विश्वसनीयता, वैधता तथा मानकों की विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। विश्वसनीयता ज्ञात करने की किसी भी उपर्युक्त विधियों का प्रयोग करके परीक्षण की विश्वसनीयता का ज्ञात की जा सकती है। साधारणतः 0.80 से अधिक विश्वसनीयता गुणांक वाले परीक्षण को एक अच्छे परीक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। परीक्षण के उद्देश्य के आधार पर परीक्षण की वैधता सुनिश्चित की जाती है। उपलब्धि परीक्षण के लिए साधारणतया पाठ्य वस्तु वैधता स्थापित करते हैं। परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या के लिए मानक भी ज्ञात किए जाते हैं। परीक्षण के लिए उपर्युक्त प्रकार के मानकों की गणना परीक्षण निर्माता करता है। विश्वसनीयता, वैधता तथा मानकों के संबंध में विस्तृत चर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी है। परीक्षण निर्माता का अंतिम कार्य परीक्षण निर्देशिका का तैयार करना है। परीक्षण निर्देशिका टेस्ट मैनुअल में परीक्षण के निर्माता से संबंधित जानकारी रहती है। परीक्षण का उद्देश्य, मापी जाने वाली योग्यता की परिभाषा, विशिष्टीकरण तालिका, पद विश्लेषण के आंकड़े प्रशासित करने व अंकन करने की विधियां, विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक आदि का निर्माण वर्णन परीक्षण निर्देशिका में किया जाता है। परीक्षण निर्देशिका की सहायता से अन्य अध्यापक परीक्षण के संबंध में विभिन्न सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं तथा आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। विदेशों में तथा भारत में भी शैक्षिक संप्राप्ति के लिए विभिन्न विषयों में अनेक संप्राप्ति परीक्षण तथा परीक्षण बैटरियों का निर्माण तथा मानकीकृत किया गया है, परंतु पाठ्यवस्तु की प्रकृति के अंतर के कारण इन परीक्षणों का प्रयोग नहीं होता है। तथापि आवश्यकता अनुसार परीक्षणों की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के उपरांत इन मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। परीक्षण इसके लिए सावधानी से कार्य संपादित करना होगा। सारांश, परीक्षण निर्माण व मानकीकरण की प्रक्रिया की चार मुख्य सोपानों में बांटा जा सकता है। परीक्षण की योजना बनाना, प्रश्नों की रचना करना, प्रश्नों का चयन करना तथा परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण निर्माण के प्रथम सोपान अर्थात योजना बनाने के अंतर्गत परीक्षण के प्रकार, विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या, परीक्षण अवधि, प्रशासन व अंकन अवधि विधि आदि बातों का निश्चय किया जाता है तथा विशिष्टीकरण तालिका बनाई जाती है। द्वितीय सोपान में विशिष्टीकरण तालिका के अनुरूप प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रश्नों को बनाते समय परीक्षार्थियों को अनावश्यक भ्रम अथवा संकेत देने से बचना चाहिए। निदानात्मक परीक्षणों के लिए अति सूक्ष्म शिक्षण बिंदुओं पर आधारित प्रश्न बनाने चाहिए। परीक्षण निर्माण के तृतीय सोपान में उचित प्रश्नों का चयन किया जाता है। इसके लिए कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता नाम के दो गुणांकों की गणना करके पद विश्लेषण किया जाता है तथा उपर्युक्त प्रश्नों का चयन कर लिया जाता है। पद विश्लेषण के आधार पर प्रश्नों में सुधार भी किया जाता है। अंतिम सोपान परीक्षण अर्थात मूल्यांकन सोपान के अंतर्गत परीक्षण की विश्वसनीयता व वैधता की जांच की जाती है तथा मानकों को विकसित किया जाता है। तत्पश्चात परीक्षण निर्देशिका तैयार कर ली जाती है।